रात गहराई थी। हवेली के लंबे गलियारों में पीली रोशनी की लकीरें फैली हुई थीं। सब तरफ सन्नाटा था। बस कहीं दूर से घड़ी की धीमी धीमी टिक-टिक सुनाई दे रही थी। विक्रम अपने कदम भारी करते हुए कमरे की ओर बढ़ रहा था। दरवाज़ा खोलते ही भीतर की रोशनी ने उसका स्वागत किया। कमरे के बीचों बीच मोनी खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और इंतज़ार की झलक। वो हल्के गुलाबी रंग के नाइटगाउन में थी, जिसके ऊपर हल्की नेट वाली शॉल डली हुई थी। बाल खुले हुए कंधों पर गिर रहे थे और आंखों में सवाल भरे हुए थे। आ गए? मोनी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में राहत भी थी और खटास भी। विक्रम ने बिना जवाब दिए अपना कोट उतारा और कुर्सी पर डाल दिया, फिर टाई ढीली करते हुए कमरे के बीच में आ खड़ा हुआ। मोनी ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। तुम रैना को दिलासा देकर आए हो ना? विक्रम का चेहरा तन गया। उसने आंखें मोनी की आंखों से मिलाई, लेकिन कुछ बोला नहीं। मोनी ने आगे कहा, मैं कभी समझ नहीं पाती विक्रम, तुम्हारा खेल क्या है? तुम रैना को बर्बाद करना चाहते हो या फिर उसके सुख के साथी बनना चाहते हो? तुम्हारी बातों से तो मुझे यही लगता है कि तुम खुद भी तय नहीं कर पाते कि उसके साथ क्या करना है। ये सुनते ही विक्रम की सांसें तेज हो गईं, उसके माथे की नसें तन गईं और चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। वो अचानक मोनी की ओर बढ़ा और उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मोनी के गालों पर गहरी छाप छोड़ रही थीं। चुप! विक्रम की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। तुम मेरी प्लानिंग कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। मोनी की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें रुक सी गईं। उसने होठों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की पकड़ मजबूत थी। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? विक्रम उसके कान के पास झुककर बोला, आवाज में जहर टपक रहा था। तुम अपनी सारी प्लानिंग सबके सामने खोलकर रख देती हो, तभी तो आज तक कभी रैना को परेशान करने में कामयाब नहीं हो पाई। मोनी ने हाथों से उसका सीना धकेलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार उसने गुस्से और बेबसी में फुसफुसाया, अच्छा, मैं बेवकूफ हूं, यही समझते हो तुम? विक्रम ने धीरे धीरे उसका चेहरा छोड़ा और पीछे हट गया। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। वो कमरे के बीच खड़ा था। सफ़ेद शर्ट के ऊपर की दो बटन खुले हुए थे और काले ट्राउज़र की सिलवटें उसकी जल्दबाजी और गुस्से को दिखा रही थीं। मोनी अपना चेहरा सहलाते हुए आईने की ओर बढ़ी। उसके गाल पर लाल निशान उभर आया था। उसने आईने में खुद को देखा, फिर विक्रम की ओर मुड़ी। हाँ, शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, तभी तो सोचती रही कि तुम मुझे कभी समझोगे, पर सच ये है कि तुम्हारे लिए सब बस खेल है। रहना भी, मैं भी, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, बस अपनी जीत चाहिए। विक्रम ने धीरे धीरे गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा अब ठंडा और सख्त हो गया था। जीत ही सब कुछ है मोनी, और इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। रैना, वो मेरी कहानी का हिस्सा है, और तुम बस मोहरा। मोनी की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे उसके सामने आई और बोली, मोहरा, तो ये है तुम्हारी नज़रों में मेरी जगह? मैं जो तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारी हर चाल में तुम्हारा साथ दिया, वो सब कुछ बेकार? विक्रम ने उसकी ओर देखा, होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन वो मुस्कान ठंडी और निर्दयी थी। तुम्हारा साथ मेरे लिए ज़रूरी था, लेकिन तुम्हारी अहमियत उतनी ही है जितनी ये खेल में प्यादे की होती है। याद रखना मोनी, मैं सिर्फ राजा हूँ, और खेल हमेशा मेरे हिसाब से चलेगा। मोनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी शॉल कसकर पकड़ी और कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। तुम मुझे तोड़ रहे हो विक्रम, उसने बमुश्किल कहा। एक दिन ये सब तुम्हारे लिए ही भारी पड़ेगा। विक्रम उठ खड़ा हुआ। उसने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम चाहे जो सोचो मोनी, लेकिन रैना को पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना वो, ना तुम, ना ये दुनिया। उसकी आंखों की चमक अब और भी खतरनाक लग रही थी। मोनी वहीं खड़ी रही, आंसुओं में डूबी, और विक्रम अपने हाथों को पीछे बांधकर खिड़की की ओर चला गया। बाहर अंधेरे में फैला आसमान जैसे उसकी महत्वाकांक्षा का आईना था, काला, गहरा और अंतहीन। कमरे की हवा अब भारी हो चुकी थी। एक ओर विक्रम का जुनून, दूसरी ओर मोनी की टूटती हुई उम्मीदें, दोनों का टकराव उस रात हवेली की दीवारों में कैद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में फिर वही गहरी खामोशी उतर आई। विक्रम अपने गुस्से में सोफे पर जा बैठा था, माथे पर शिकने और नज़रें सख्त, पर मोनी वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी आग थी। उसने गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई।
बाहर अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां डोल रही थीं। मोनी ने अपने दिल को थामते हुए सोचा, विक्रम मुझे बेवकूफ कहता है, शायद मैं हूं भी, लेकिन मैं जानती हूं मैं उसे इतनी आसानी से खो नहीं सकती। उसने आज तक जितनी बातें मुझसे छुपाईं उतनी किसी और से नहीं, तो फिर मैं क्यों हार मान लूं? वो यादों में चली गई। कितनी बार उसने विक्रम की नजरों में अपने लिए चाहत तलाशनी चाही थी, पर हर बार उसे सिर्फ ठंडी दीवार मिली। फिर भी वो पीछे क्यों नहीं हटी? क्योंकि मैं जानती हूं, रहना चाहे जितनी मासूम लगे, लेकिन विक्रम को समझने वाली सिर्फ मैं हूं। मैं उसके गुस्से की भाषा पढ़ सकती हूं, उसकी चुप्पी के मायने समझ सकती हूं। अगर मैंने कभी गलतियां की तो वो सिर्फ अपने हिस्से का प्यार बचाने के लिए। मोनी ने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर आंसुओं की नमी अब भी चमक रही थी, लेकिन आंखों में जिद थी। मैं हार नहीं सकती। इस वक्त मेरी जवानी है, मेरा हक है कि मैं उसे पालूं। मैं उसे रैना की तरह चुपचाप नहीं छोड़ दूंगी। चाहे कितनी भी चालें चलनी पड़े, चाहे कितनी बार विक्रम मुझे धक्का दे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसकी रूह तक पहुंचूंगी। अगर उसने मुझे बेवकूफ कहा है तो मैं उसे साबित करके दिखाऊंगी कि मैं उसकी सबसे बड़ी ताकत हूं। उसके होंठ कांपे, लेकिन उनमें कड़वी मुस्कान उभरी। रैना को लगता है कि वो विक्रम को बदल देगी, लेकिन उसे नहीं पता कि ये खेल अब मेरे हाथ में है। चाहे जैसा भी करना पड़े, मैं विक्रम का दिल जीत कर रहूंगी। वो मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी चाहत है, और चाहत इतनी आसानी से नहीं छोड़ी जाती। मोनी धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ी और वहीं बैठ गई। उसके हाथ अनजाने में कंबल की सिलवटों को सहलाने लगे, मानो खुद को दिलासा दे रही हो। मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन अब नहीं, इस बार मैं उसे पाकर रहूंगी। चाहे इसके लिए मुझे रहना को और तोड़ना पड़े या फिर खुद को दर्द में झोंकना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विक्रम मेरा है। उसके भीतर से जैसे कोई और आवाज गूंजी, प्यार और जुनून में बस एक रेखा होती है मोनी, और तुम वो रेखा पार कर चुकी हो। मोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें गहरी और भारी हो गईं। कमरा अब भी सन्नाटे में डूबा था, लेकिन उसके दिल के भीतर एक तूफान आकार ले चुका था, ऐसा तूफान जो अब रुकने वाला नहीं था।